समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सभी श्रोताओं को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी रेणु कटारिया। नमस्कार रेणु।
नमस्कार मनोज, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड एज डेली आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे वी गिव यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 7th of March। तो क्या खास है आज मनोज?
हाँ जी, आज जन औषधि दिवस है। इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य सभी को सस्ते मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने इस पहल का समर्थन करने के लिए पूरे देश में सप्ताह भर की गतिविधियां आयोजित की हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा जन औषधि जन चेतना सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विविध प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उसकी उपयोगिता और उसके लाभ के संबंध में आम जनमानस को जागरूक करने की ये कवायद की जा रही है।
Manoj, you know, despite our country being one of the leading exporters of generic medicines to the world, majority of Indians lack sufficient access to affordable medicines in India. And so, Jan Aushadhi Divas is celebrated to raise awareness about this scheme and promote the use of generic medicines. Our correspondent reports that the Chemicals and Fertilizers Ministry organized week-long activities across the country to support this initiative.
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के माध्यम से जनता को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बाजार की तुलना में 50-80% कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। यह उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केवल प्रमाणित निर्माताओं से खरीदी गई दवाइयां प्रदान करती है। इस पहल के तहत शुरू की गई प्रमुख पहलों में से एक सुविधा सैनिटरी नैपकिन है, जिसमें एक पैड की कीमत मात्र 1 रुपये है। देश के सभी जिलों में अब 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र चालू हैं और इस योजना ने स्वरोजगार के लिए आशाजनक अवसर पैदा किया है, जिससे स्थायी और नियमित आय प्रदान होती है। दीपेंद्र और भानु प्रताप सिंह के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
जन औषधि दिवस के उपलक्ष्य पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि इस योजना के तहत सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है।
हम जन औषधि कार्यक्रम उसको एक कैंपेन के रूप में आगे जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। 15,000 के लगभग ये जन औषधि केंद्र आज देश में बन गए हैं। 2027 तक इनकी संख्या 25,000 कर दी जाए, क्योंकि एक नोबल मिशन है ये स्कीम के अंतर्गत। इतने भी लोगों तक जाके सस्ती लेकिन इफेक्टिव एफिकेशियस दवाएं मिल पाए।
And our international sand artist Sudarshan Patnaik says this year's theme is Daam Kam Dawai Uttam, and in line with this we created sand sculpture highlighting benefits of the initiative.
प्रोजेक्टिंग है दाम कम दवाई उत्तम, उसी को लेकर हम लोगों ने ये सैंड स्कल्पचर्स क्रिएट किया। ये जो जनरल लोगों को बहुत बेनिफिट होता है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो इनिशिएटिव है देश के लिए, देश की हर कोई जनता के लिए एक बहुत बड़ा उपकार है, तो उसी को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर सैंड स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं, जिसमें की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं और उसके साथ ये मैसेज लिखे हुए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दादरा तथा नगर हवेली और दमन दीव की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
अपने दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलवासा में 450 बिस्तरों वाले नमो अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही श्री मोदी केंद्र शासित प्रदेश में 1,075 करोड़ रुपए की 25 परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री केंद्र शासित प्रदेश में 510 करोड़ रुपए की लागत की 13 अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, जिनमें दमण में 300 बिस्तरों की क्षमता वाले मारवाड़ हॉस्पिटल के 4 ब्लॉक का निर्माण शामिल है। दमण से प्रदीप भावसार के साथ अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
Prime Minister Narendra Modi has said that India's achievements and successes have sparked a new wave of hope across the globe. He said today the whole world is saying that it is an era of India. Addressing an event organized by a private news channel in New Delhi, Mr. Modi said, India is driving global growth today and moving at a faster pace on the path of development. Prime Minister Modi said today's India thinks big, sets ambitious targets and delivers remarkable results. He said in the past decade, India has become the 5th largest economy and is now rapidly moving towards becoming the 3rd largest economy in the world.
शहर के रविंद्र भवन में आज से साहित्य अकादमी का वार्षिक साहित्योत्सव शुरू होने जा रहा है। 6 दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव होने वाला है। इस बार साहित्योत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से 50 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 700 से अधिक लेखक हिस्सा लेंगे। समारोह में लगभग 120 सत्र होंगे, जिसका विषय है भारतीय साहित्यिक परंपराएं। इसमें युवा लेखक, पूर्वोत्तर और आदिवासी लेखक, LGBTQ लेखक, कवि, प्रकाशक और विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोग शामिल होंगे। साहित्य महोत्सव में प्रवेश निःशुल्क है।
Moving on to the world of sports, All India Football Federation has announced that former Indian captain Sunil Chhetri is all set to return to the national team for the FIFA international window matches against Maldives and Bangladesh in Shillong this month. We have a report.
Indian football legend Sunil Chhetri had earlier announced retirement from international football, having played his last game against Kuwait in June last year. However, Chhetri's return comes at a pivotal moment ahead of the AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027 qualifiers third round. Next update is also from football, where in the Indian Super League ISL football, Punjab FC outclassed Hyderabad FC by 3-1 at the GMC Balayogi Athletic Stadium in Hyderabad last night. Punjab's Shami Singhamayum became the youngest goal scorer in the history of ISL. Today, Kerala Blasters FC will host Mumbai City FC at the Jawaharlal Nehru Stadium in Kochi. Next we have from Women's Premier League WPL Cricket, where Mumbai Indians defeated UP Warriors by 6 wickets in Lucknow last night. Haley Matthews was adjudged player of the match. Today Gujarat Giants will lock horns with Delhi Capitals in Lucknow at 7:30 PM. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
Ye the ab tak ke mukhya samachar. Ab rukh karte hain महानगरों के समाचारों का।
Yes, Manoj, I'll begin with Chennai Metro first. Sleuths of enforcement officials began a search at the places belonging to the friends of State Minister Senthil Balaji. The search was conducted linking to money laundering in the alleged procurement of liquor from distilleries and breweries. Simultaneously, searches also began in 2 places at Chennai and 4 places in Karur and also the headquarters of Tamil Nadu State Marketing Corporation and offices of distilleries and breweries that supply liquor to the state-owned liquor corporation. The houses of Karthik, a personal assistant to the minister, a financial controller and public works contractor were also searched.
Ab Delhi ki khabar.
Ji.
Delhi ki Mukhyamantri Rekha Gupta ne kal Shalimar Bagh Vidhan Sabha ke alag-alag ilaqon ka nirikshan kiya. Is dauran unhone tooti sadakon, kharab sewer vyavastha aur parking व्यवस्था जैसी समस्याओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सालीमार गांव में स्थित एक सरकारी स्कूल में भी मुख्यमंत्री पहुंची। स्कूल में नल से पेयजल नहीं आने, खराब शौचालय और बाकी अव्यवस्थाओं पर श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों को इन समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश दिए। दिल्ली की एक और खबर, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ड्रग्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इस कड़ी में दिल्ली पुलिस ने स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम NDPS एक्ट के दो मामलों में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई में 69 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 35 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से ड्रग्स को लाने और ले जाने में इस्तेमाल की गई एक कार और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं।
मूविंग ऑन टू बेंगलुरु, Mysuru Akashvani Radio Station is celebrating its 90th anniversary today, Manoj. And it was in 1935 that Mysuru, which was a princely state then, got its first radio station. To mark the 90th anniversary, a day-long celebration is organized today. The Director General of Akashvani and News Services Division, Dr. Pragya Paliwal Gaur, will inaugurate Nudi Nada Sangama, a cultural extravaganza today in Mysuru radio station. Sutturu Sri Shetra Mad Pontiff, Jagadguru Sri Shivaratri Dashikendra Mahaswamiji, the scion of the Mysuru royal family, Pramoda Devi Vadiyar, and senior scholar Dr. T.V. Venkatachala Shastri will grace the occasion. Cycle rally, cultural programs from college students, performances by folk troupes, classical and light music recital, fusion music will be organized as part of the joyous occasion. Eminent personalities will be honored on this occasion.
Ab Mumbai, Maharashtra ki khabar. राजस्व खुफिया निदेशालय DRI के अधिकारियों ने दुबई से करीब 19 करोड़ रुपए मूल्य के सोने की तस्करी करने पर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। DRI ने खुफिया जानकारी के आधार पर दुबई से मुंबई आए दो यात्रियों की तलाशी में विदेशी मार्क वाले एक एक किलो सोने की 21 सिल और एक अधकटा टुकड़ा बरामद किया, जिसे उन्होंने अपनी कमीज के नीचे बेल्ट के अंदर छिपा रखा था। दोनों ने सोने की तस्करी में शामिल होने की बात स्वीकार की है। बरामद किए गए 21 किलो 288 ग्राम सोने की कीमत 18 करोड़ 92 लाख रुपए है। सोना जब्त कर दोनों तस्करों को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
And the last metro I have with me is Hyderabad Metro. Telangana State Cabinet has given approval for draft legislations on implementing the Scheduled Caste SC's sub-categorization into groups 1, 2 and 3 and ensuring 42% reservations for backward classes or BCs in education, employment and local bodies. Chaired by Chief Minister A. Revanth Reddy last evening, the meeting decided to introduce both these bills in the upcoming budget session of the Assembly. Addressing the media at the Secretariat late night, Ministers P. Srinivas Reddy and P. Prabhakar stated that BC reservations will be implemented based on the caste census conducted by the state government, while SC sub-categorization reservations will follow recommendations from the one-man committee led by retired High Court Judge Justice Shamim Akhtar.
अब कोलकाता पश्चिम बंगाल की खबर
जी।
छिवासी में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग ने गुरुवार को कोलकाता में अपनी पहली बैठक की। आज बैठक का एक और दौर आयोजित किया जाएगा। आज 11 सदस्यीय बांग्लादेश टीम ने अपने भारतीय समकक्ष के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। कल एक तकनीकी समिति बनाई गई है। ये समिति आज बैठक करेगी और उन विवरणों की सिफारिश करेगी जिन पर गंगा नदी जल बंटवारे की संधि का भविष्य निर्भर करेगा। बांग्लादेश के साथ मौजूदा गंगा नदी जल बंटवारे की संधि 30 साल पूरे होने के बाद अगले साल समाप्त हो जाएगी। टीम भारत से बांग्लादेश में बहने वाली अन्य नदियों के पानी के बंटवारे पर भी सिफारिशें देंगी। 11 सदस्यीय बांग्लादेशी टीम ने इस सप्ताह की शुरुआत में मुर्शिदाबाद में फरक्का बैराज का दौरा किया और जल वितरण तंत्र का निरीक्षण किया था। उन्होंने गंगा पद्मा नदी जल फार्मूले के माध्यम से जल वितरण पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। और अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में कोहरा छाए रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं रेणु से।
थैंक यू मनोज। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग और मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 24 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 38 डिग्रीज। Bengaluru is expected to have mainly clear sky. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and the maximum will be around 33 degrees. And Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 15 degrees and a maximum of 34 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 7 मार्च है।
And there are a lot of events that happened on this day, Manoj. So I'll begin with the year 1876 on this day, that is 7th of March. Alexander Graham Bell patents the telephone. On the same day in 1905, Arthur Conan Doyle published The Return of Sherlock Holmes collection in London. In 1912, on this day, Roald Amundsen announced his discovery of the South Pole. And in the year 1968, on this day, very important, the BBC broadcasted the news for the first time in color on television.
2002 में आज ही के दिन इस्लामाबाद में दक्षिण सूचना मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन के दौरान पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने पुनः द्विपक्षीय मुद्दे उठाए। और 2003 में आज ही के दिन राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को क्यूबा की संसद ने छठे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित किया। वे दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासनाध्यक्ष हैं। 2006 में आज ही के दिन ईरान के राष्ट्रपति ने देश की परमाणु गतिविधियों पर रोक के लिए संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी से क्षतिपूर्ति की मांग की। 2007 में आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान आतंकवाद पर जांच में मदद के लिए तैयार हुए।
And I am now going to talk about the year 2022 on this day, that is 7th of March. The global death toll from COVID-19 passed 6 million according to Johns Hopkins figures.
और थोड़ा पीछे चलते हैं। 2008 में आज ही के दिन त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ लेफ्ट फ्रंट ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज की। और 2008 में आज ही के दिन अंतरिक्ष यात्रियों ने मंगल ग्रह पर झील की खोज की।
Yes, Manoj, that was a lot of information regarding what all happened on this day, that is 7th of March. So now let's move to our next segment.
जी जी, आज पुण्यतिथि है, महान विभूतियों की और जन्म दिवस है, तो उन्हें याद करते हैं।
जी बिल्कुल।
आज पुण्यतिथि है हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार रवि शंकर शर्मा की। उनका जन्म 3 मार्च 1926 को दिल्ली में हुआ था। बतौर संगीत निर्देशक उन्होंने 1955 में फिल्म वचन से अपना संगीत का सफर शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने 50 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया। रवि को उन लोगों में माना जाता है जिन्होंने महेंद्र कपूर और आशा भोसले को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि हिंदी फिल्मों के कुल 500 सुपरहिट गीतों को लिया जाए तो उनमें अकेले रवि के 100 से ज्यादा सुपरहिट गीत हैं और बाकी 400 सुपरहिट गीतों में 15 से ज्यादा संगीतकारों के नाम आते हैं। ये भी एक दिलचस्प बात है कि रवि की धुनों में रंगे गीत ब्याह शादियों में गाए जाने वाले परंपरागत फिल्मी गीतों में सभी से ज्यादा लोकप्रिय हैं। उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार, पद्मश्री, लता मंगेशकर पुरस्कार, कवि प्रदीप शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया था।
चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए।
And Manoj, I would like to add here that Ravi had no formal training in classical music. Instead, he learnt music by listening to his father singing bhajans. And in the year 1947, he went to meet the famous singer Mohammad Rafi, who was singing at the Independence Day celebration event, Jashn-e-Jamhooriyat, at the Coronation Hotel, Fatehpur, Delhi. And he told Rafi that he wanted to be a music director. Yahan par, according to Ravi, Mohammad Rafi advised him to first learn music and notation, and he taught himself to play the harmonium and other classical instruments. And very interesting, Ravi was discovered by Hemant Kumar, who hired him to sing backing vocals in Vande Mataram from the film Anand Math in the year 1952. And jaise ki aapne bataya hai, he was one of the music directors who shaped the career of Asha Bhonsle with songs like Tora Man Darpan Kehlaye and Aage Bhi Jaane Na Tu. Yes, so let's listen into another beautiful song composed by Ravi.
Aaja, tujhko pukare mera pyar, tujhko pukare mera pyar, aaja. मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में तुझको पुकारे मेरा प्यार.
Beautiful music, wasn't that, Manoj? So today is the death anniversary of Charles Grey, who was an English actor and voice artist, appearing in around 140 films and TV series. He was best known as the arch-villain Ernst Stavro Blofeld in the James Bond film Diamonds Are Forever, jiska ki gana hum abhi sun rahe hain, and Dicko Henderson in a previous Bond film, You Only Live Twice, Sherlock Holmes' brother Mycroft Holmes in The Adventures of Sherlock Holmes, and the criminologist in the Rocky Horror Picture Show. So here, let's listen into this beautiful song, Diamonds Are Forever, from the movie, same movie, jo ki inke upar filmaya gaya tha.
Touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart.
मुझे तीन दो शब्द कि मैं कविता कह पाऊं, एक शब्द वो जो न कभी जिह्वा पर लाऊं, और दूसरा जिसे कह सकूं किंतु दर्द मेरे से जो ओछा पड़ता हो, और तीसरा खरा धातु पर जिसको पाकर पूछूं क्या न बिना इसके भी काम चलेगा और मौन रह जाऊं. मुझे तीन दो शब्द कि मैं कविता कह पाऊं, ये रचना थी अज्ञेय की. आज जयंती है हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की. उनका जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था. अज्ञेय को प्रतिभा संपन्न कवि, शैलीकार और कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और सफल अध्यापक के रूप में जाना जाता है. आपकी मुख्य रचनाएं आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, शेखर एक जीवनी आदि हैं. उन्हें अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन रीथ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.
And today we are paying tributes to Paramahansa Yogananda, who was an Indian and American Hindu monk, yogi and guru who introduced millions to meditation and Kriya Yoga through his organization Self-Realization Fellowship or Yogda Satsang Society of India, the only one he created to disseminate his teachings. He published his autobiography of a yogi in 1946 to critical and commercial acclaim. It has sold over 4 million copies, with Harper San Francisco listing it as one of the 100 best spiritual books of the 20th century. Aur bahut hi ek और इंट्रोडक्शन के बारे में हम देना चाहेंगे मनोज. फॉर्मल एप्पल सीईओ स्टीव जॉब्स ऑर्डर्ड 500 कॉपीज ऑफ द बुक फॉर ईच गेस्ट एट हिज मेमोरियल टू बी गिवन अ कॉपी एंड इट वाज आल्सो वन ऑफ एल्विस प्रेस्लीज फेवरेट बुक्स एंड वन ही गेव आउट ऑफन. एंड एक बायोग्राफर है ऑफ योगानंद फिलिप गोल्डबर्ग हु कंसिडर्स हिम द बेस्ट नोन एंड मोस्ट बिलव्ड ऑफ ऑल स्पिरिचुअल इंडियन टीचर्स हु हैव कम टू द वेस्ट.
यस. और आज जन्म दिवस है भारतीय अभिनेता अनुपम खेर का. उनका जन्म 7 मार्च 1955 को शिमला में हुआ है. उन्होंने 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. मुख्यतः उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है. इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सी इंटरनेशनल फिल्में भी की हैं जिनमें मुख्यतः बेखम लस्ट जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं. अनुपम खेर को 5 बार कॉमिक रोल में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 5 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं. विजय फिल्म में अपने किरदार के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है. अभिनेता होने के साथ साथ वे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं. हिंदी सिनेमा और कला के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने 2004 में उन्हें पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था. आइए सुनते हैं उनका एक संवाद.
मैं वो हूँ जो काम पर जाता है तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं.
प्रकाश राठौर.
आई एम.
उसने मुझे अपना नाम बताया लेकिन मैं वो नाम किसी को नहीं बता सकता. इंसान नाम में मजहब ढूंढ लेता है. हम सब जानते थे कि आम आदमी परेशान है इन सब चीजों से, लेकिन एक आम आदमी ये रास्ता भी ले सकता है इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था. वन कॉमन मैन हैड द गट्स.
Yesterday is the birthday of Rachel Hannah Weisz, who is an English actress and known for her roles in independent films and blockbusters. She has received several awards, including an Academy Award, a BAFTA Award, a Golden Globe Award, and a Laurence Olivier Award. Her film Breakthrough came with her starring role as Evelyn Carnahan in the Hollywood action films The Mummy in 1999 and The Mummy Returns in 2001. So let's listen into this dialogue of Evelyn, the character she plays in the movie Mummy, where she makes a mess in the library. So let's listen into this dialogue.
Sacred stones, sculpture, anesthetics. Socrates, Seth, Volume 1, Volume 2, and Volume 3, and Tuthmosis. What are you doing here? Tea.
आज जन्म दिवस है निर्माता निर्देशक अनिल शर्मा का. उनका जन्म 7 मार्च 1958 को मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ है. अनिल शर्मा को पढ़ाई के दौरान ही दिलचस्पी सिनेमाटोग्राफी में हो गई. फिल्म उद्योग में उन्होंने अपनी पहली नौकरी बलदेव राज चोपड़ा के सहायक के रूप में पति पत्नी और वो द बर्निंग ट्रेन और इंसाफ का तराजू जैसी फिल्मों से की. शर्मा ने 1981 में राधा रानी अभिनीत श्रद्धांजलि के साथ अपना निर्देशन शुरू किया. 1980 के दशक की शुरुआत में वे ऐलाने जंग के साथ निर्माता बन गए जिसे उन्होंने निर्देशित भी किया. शर्मा ने 1987 में धर्मेंद्र के साथ काम करना शुरू किया जब उन्होंने हुकूमत को निर्देशित किया जो वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई.
दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, मैंने रंगा बसंती हो, मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए.
आज जन्म दिवस है पार्श्व गायिका साधना सरगम का. उनका जन्म 7 जुलाई 1962 को दाभोल महाराष्ट्र में हुआ है. उनका असली नाम साधना पुरुषोत्तम घाणेकर है. साधना 4 साल की आयु से गाने गा रही हैं. विश्वात्मा के साथ समुन्दर पार गाने से उन्हें ख्याति मिली. पहला नशा, पहला खुमार, दर्द करारा, साई राम, साई श्याम साई, भगवान बिन साजन झूला झूलू आदि उनके मशहूर हिंदी गीत हैं। वे हिंदी, मराठी, बांग्ला, नेपाली, तमिल और तेलुगु भाषा की फिल्मों में अपने पार्श्व करियर के लिए जानी जाती हैं। वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार की प्राप्तकर्ता हैं। उन्होंने 5 महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार, राज्य गुजरात फिल्म पुरस्कार और 1 ओडिशा राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीता है।
And you know what, Manoj, it was with this song Har Kisi Ko Nahi Milta from the movie Jaabaz that she was noticed.
और अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
नमस्कार।